ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणे परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो आज प्रातःकालीन इस भागवत सत्र में हम क्रमानुसार अष्टम स्कंद का 23 अध्याय, उस अध्याय का हम 11, 12, 13 श्लोक में परपट नहीं है, तो हम 13 नंबर श्लोक में ही परपट नहीं है, तो इसका हम श्लोक पढ़ेंगे, उसका अनुवाद पढ़ेंगे। उसके बाद 14 नंबर श्लोक में उसका तात्पर्य परपट सब कुछ है, अनुवाद है, तात्पर्य है, तो हम 14 नंबर श्लोक के ऊपर कुछ व्याख्या करेंगे। तो मैं पहले क्रमानुसार श्लोक पढ़ूंगा। अध्याय का नाम है देवताओं को स्वर्गलोक की पुनः प्राप्ति। अध्याय 23 श्लोक संख्या 11। श्री शुक उवाच अज्ञं भगवतो राजन् प्रह्लादो बलिना सह बाणं मित्यं अल प्रज्ञो मुद्याधाय कृतांजलिः परिक्रम्यादि पुरुषं सर्वासुर चमुपति प्रणतस्तदनुज्ञाय प्रणतस्तदनुज्ञातः प्रबिबेश महाबिलम्। श्लोक का अनुवाद। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, समस्त असुर पतियों के स्वामी प्रहलाद महाराज ने बलि महाराज समेत हाथ जोड़कर भगवान के आदेश को सिर पर चढ़ाया, भगवान से हाँ कहकर उनकी प्रदक्षिणा करके तथा उन्हें सादर प्रणाम करके उन्होंने सुतल नामक अधोलोक में प्रवेश किया। श्लोक संख्या 13। अताहो शन संग्राजन हरिर नारायणो अंति अताहो शन संग्राजन हरिर नारायणो अंतिके आसिनम मृत्युजां मध्ये सदशी ब्रह्मवादिनम। तत्पश्चात भगवान हरि अथवा नारायण ने शुक्राचार्य को संबोधित किया, जो पुरोहितों ब्रह्म होता उद्गादा तथा उर्धर्ज्यों के निकट ही सभा में बैठे थे। हे महाराज परीक्षित, ये सभी पुरोहित ब्रह्मवादि थे, अर्थात यज्ञ संपन्न करने के लिए वैदिक सिद्धांत का पालन करने वाले थे। श्लोक संख्या 14। ब्रह्मन् संतनु शिष्यस्य कर्म छिद्रं वितन्वतः यतत् कर्म शोवैषम्यं ब्रह्मदृष्टं शमं भवेत्। ब्रह्मन् संतनो शिष्यस्य कर्म छिद्रं वितन्वतः यतत् कर्मशु वैषम्यं ब्रह्म दृष्टं समं भवेत्। ब्रह्मन् संतनु शिष्यस्य कर्मचिद्रं वितन्वतः यतत्कर्म शुभैषम्यं ब्रह्म दृष्टं शमं भवेत्। पढ़िए। कोई माताएं पढ़ेंगे? श्लोक का शब्दानुवाद। ब्रह्मन् हे ब्राह्मण संतनु कृपया वर्णन करें शिष्यस्य अपने शिष्य का कर्मछिद्रम सकाम कर्म के दोष वितन्वतः यज्ञकर्ता के यत्तत् जो कर्मशु कार्यों में वैषम्यम त्रुटि ब्रह्मदृष्टम ब्राह्मणों की दृष्टि में समम शम भवेत हो जाती है। श्लोक का अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद्भव चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज के द्वारा श्रील प्रभुपाद की इच्छा अनुवाद। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ शुक्राचार्य, आप यज्ञ में लगे अपने शिष्य बलि महाराज का अपराध या त्रुटि बतलाइए। इस अपराध का निराकरण योग्य ब्राह्मणों की उपस्थिति में निर्णय लेने पर हो जाएगा। तात्पर्य, जब बलि महाराज तथा प्रहलाद महाराज सुतल लोक के लिए रवाना हो गए तो भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य से पूछा कि बलि महाराज में वह कौन सा अपराध था जिसके कारण उन्होंने उन्हें साप दे दिया था। यह तर्क किया जा सकता है कि जब बलि महाराज उस स्थान से चले गए थे तो उनके दोषों का निर्णय कैसे हो सकता था। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य को बताया कि वहां बलि महाराज की उपस्थिति आवश्यक नहीं थी, क्योंकि ब्राह्मणों की उपस्थिति में निर्णय हो जाने पर उनके सारे दोषों एवं कमियों का निराकरण हो जाएगा। जैसा कि अगले श्लोकों में बताया गया है कि बलि महाराज का कोई दोष न था, शुक्राचार्य ने वृथा ही उन्हें साप दे दिया था, फिर भी बलि महाराज के लिए यह अच्छा ही हुआ। शुक्राचार्य के साप से उनकी सारी संपत्ति जाती रही, जिसका परिणाम यह हुआ कि भगवान ने उनकी भक्ति में प्रगाढ़ श्रद्धा के कारण उन पर कृपा की। निसंदेह भक्तों को सकाम कर्मों में लगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसा कि शास्त्र का कथन है, सर्वाहरणम अच्युतेज्या भागवतम चतुर्थ स्कंद 31 अध्याय 14 नंबर श्लोक। अच्युत भगवान की पूजा करके हर एक को प्रसन्न किया जा सकता है, क्योंकि बलि महाराज ने भगवान को प्रसन्न कर लिया था। अतएव उनके यज्ञा करने में कोई कमी नहीं थी। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मृतं येनम तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशकल्पतरुवेश्य कृपा सिंधु वेवश्य पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, मैं सर्वप्रथम अखिल ब्रह्मांड के नायक सचराचर जगत का मालिक परम ब्रह्म परम धामं पुरुषं पवित्रं भवान श्री श्री राधा रास तिवारी जी के चरण कमल में मेरे कोटि कोटि बार नमन करते हुए उनके अति प्रिय भक्त अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जो कि समग्र विश्व में कृष्ण चेतना का बानी भक्ति योग प्रचार प्रसार किए श्रील भगवान कृष्ण का अति प्रिय भक्त श्रील जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमल में मेरा कोटि कोटि बार नमन करते हुए यहाँ पे उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवी को के चरण में कृपा प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि हमारा अयोग्यता होते हुए भी हमको यहाँ पे व्यासासन में बैठने के सुयोग दिया गया है। खासकर हिज होलीनेस अम्बिलास स्वामी महाराज के चरण कमल में कोटि कोटि बार नमन करता हूँ। वैष्णव का कृपा से ही सर्वसिद्धि हो सकता है, वैष्णव का कृपा से हम बोल सकते हैं हरि कथा कृष्ण कथा, ये अपने योग्यता के माध्यम से नहीं हो सकता। अपने विचार बुद्धि में कुछ भी हम नहीं कर सकते। योग्यता विचारे किछु नाई पाई तुम्हार करुणा सार। इसलिए अगर भगवान का वैष्णव का कृपा होता है तो मुकं करोति वाचालंग पंगु लंघयति गिरि। एक मुख भी बधिरा भी बात कर सकता है, मुख भी बात कर सकता है, एवं जिसका पैर नहीं है वो भी गिरि लंघन कर सकता है। तो सभी वैष्णव का कृपा सबको कृपा प्रार्थना कृपा भिक्षा करता हूँ, उनका कृपा से मैं कुछ बोलने के लिए यहाँ पे प्रयास करता हूँ। हरे कृष्ण। तो प्रसंग चल रहा है देवताओं का स्वर्गलाभ, स्वर्गलोक की पुनः प्राप्ति। काल का श्लोक में हम सुने थे कि जब प्रहलाद महाराज भगवान कृष्ण बता रहे हैं प्रहलाद महाराज को कि तुम सुतलोक में मेरा शंख चक्र गदा पद्मधारी रूप हमेशा दर्शन कर सकते हो और हमेशा मैं तुम्हारे प्रति कृपा दृष्टि लाभ करूंगा, कृपा रख सब समय तुमको मैं कृपा दृष्टि में मेरा रहोगे तुम। उसके बाद प्रहलाद महाराज और बलि महाराज सभी सुतलोक प्रस्थान किए। भगवान के निर्देश से उसके बाद भगवान कृष्ण ने शुक्राचार्य जी को पूछ रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं कि शुक्राचार्य का ऐसा बलि महाराज का क्या दोष था, इसको आप अभिशाप दे दिए। आज का जो श्लोक है ये भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं। यज्ञ में लगे अपने शिष्य बलि महाराज का अपराध या त्रुटि बतलाइए। वास्तव में जो गुरु होते हैं हर समय शिष्य का मंगल चाहते हैं, हर समय उसका हित चाहते हैं। कभी भी शिष्य अगर गलत भी काम करे तो उसको अंगुली पकड़ के सही रास्ता पे लाते हैं, ये गुरु का कर्तव्य है। शास्त्र में कहा गया है गुरु न सस्यात पिता न सस्यात जननी न सस्यात जस सौंपेति मृत्युम। जो मृत्यु मुख से हमको उद्धार नहीं कर सकते वो गुरु गुरु पदवाच्य नहीं है, वो पिता पिता पदवाच्य नहीं है, वो माँ माँ नहीं है। तो गुरु हमेशा शिष्य का हित चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शुक्राचार्य अभिशाप दे रहे हैं बलि महाराज को। एक कैसा बात है, उनका कुल गुरु है। तो जैसा कहा जाता है कि तीन प्रकार का शिष्य होते हैं, एक गुरु सेवी, एक गुरु भोगी और एक गुरु त्यागी। गुरु सेवी किसको बोलते हैं? जो गुरु का मन में क्या विचार है उसको सोच के वो कर लेते हैं। एवं गुरु भोगी जो गुरु कहने के बाद करते हैं, एवं गुरु त्यागी जो होते हैं गुरु कहने के बाद भी वो नहीं करते। तो यहां पे हम देख रहे हैं बलि महाराज कौन से कैटेगरी के हैं। उस जहां पे साक्षात भगवान कृष्ण आए हैं वहां पे किसको किसके बात सुनेंगे? पहले भगवान अगर सही बात बता रहे हैं, अगर गुरु सही बात नहीं बता रहे हैं, तो पहले पहला करते कृष्ण बंदे जगत गुरु, जस्मिन तुष्ट जगत तुष्ट, जिसको संतुष्ट करने से आज किसी को भी संतुष्ट करने का आवश्यक नहीं है, वही एकमात्र है कौन? श्री श्री राधा रास विहारी जी। तो शुक्राचार्य को अगर सही उपदेश नहीं दे रहे शुक्राचार्य, इसलिए उनको त्याग कर दिया। जैसा एक पिता पुत्र का संपर्क होता है, माँ बेटे का संपर्क होता है, हर समय अपने पुत्र के प्रति बच्चल मने स्नेह रखते हैं। पुत्र का अगर गलती भी हो जाए फिर भी माँ उसका कभी भी गलती नहीं देखता, उसको सुधारने का प्रयास करता है। उसी प्रकार गुरु नित्यानंद महाप्रभु का विस्तृतांश है, गुरु आचार्य उनका अंश है। इसलिए हम कहते हैं परम करुणा पहु द्विजना निताई गौर चंद्र, सब अवतार शार शिरोमणि केवल आनंद कंद। आनंद ही आनंद है। अगर नित्यानंद महाप्रभु का कृपा नहीं मिलेगा, गुरु का कृपा नहीं मिलेगा, तो हमारा गति किधर है? गति नहीं है। इसलिए जैसा हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जा रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि रघुनाथ पहले तुम नित्यानंद के पास जाओ। जब नित्यानंद महाप्रभु को प्रणाम कर रहे हैं, नित्यानंद महाप्रभु अपने चरण कमल को रघुनाथ दास गोस्वामी के सिर के ऊपर रख दिए। वो उनको बोले तुम जितना सर यहां पे वैष्णव है सबको तुम चुड़ा दधि भोजन कराओ। देखिए कितना अपने गुरु अगर शिष्य के ऊपर कृपा दृष्टि रख रहे हैं, उनको अगर उन प्रसन्न है तो किसी को प्रसन्न करने का जरूरत ही नहीं है। इसलिए ऐसा सदगुरु पाना मुश्किल है, ऐसा सदशिष्य ही पाना मुश्किल है। हमको अगर तीव्रता से अगर भक्ति करना है, दृढ़ता के साथ भगवान के प्रति शरणागत होना है, तो हमको गुरु के वाक्य के ऊपर दृढ़ निष्ठा करना चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि वा विप्र किबा न्यास शुद्ध कहने न जय कृष्ण तत्व वेता से गुरु। जो भगवान कृष्ण को तत्व में जानते हैं, सब वैदिक ज्ञान उनके पास है, सब शास्त्र का ज्ञान है, प्रामाणिक स्रोत से आ रहे हैं, उनकी उनसे हम दीक्षा लेना चाहिए जो कृष्ण को तत्व में जान रहे हैं। इसलिए स्कंद पुराण में गुरु का परिभाषा कहा गया है गु शब्द स्तंदकारस्य, रु शब्द स्तत निरोधक, अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्वा विधीयते। गु का शब्द, गु शब्द का अर्थ अंधकार, रु शब्द का अर्थ अंधकार निरोधकारी। अनादि काल से जीव संसार में भटक रहा है, क्लेश पा रहा है, कष्ट पा रहा है, उस जीव को दुख कष्ट जो उबार लेते हैं, अपने चरण कमल में आश्रय देते हैं, यह गुरु का परिभाषा है, इसको गुरु कहा जाता है। चैतन्य चरितामृत में भी कहा गया है सर्वदेश काल दशाय जनर कर्तव्य गुरु पासे से ही भक्तो प्रस्तव्य श्रोतव्य। सभी देश सभी काल में व्यक्ति का कर्तव्य है कि सद्गुरु का पदाश्रय करना चाहिए, यहाँ पे बलि महाराज शुक्राचार्य जी का पदाश्रय किए हैं लेकिन वो सदुपदेश नहीं दे रहे हैं। लेकिन बलि महाराज अपने ये प्रहलाद महाराज का प्रपुत्र है इसलिए उनके पास भक्त का गुण है। भगवान गीता में बोल रहे हैं भक्तिस्तु भक्त संगे न परिजायते, जब तक हमारा भक्तों का संगति में नहीं रहेंगे तो हमारा भक्ति में कभी उन्नति नहीं हो सकता। लेकिन बलि महाराज अपने प्रपुत्र अपने परदादा अपने दादा बलि प्रहलाद महाराज का अंश उसी वंश में आ रहे हैं इसलिए उनके पास भक्ति का गुण है। यदि वो गलत रास्ता दिखा रहे हैं गलत बोल रहे हैं शुक्राचार्य, फिर भी वो जान पड़े कि अगर भगवान मेरे सामने आ रहे हैं तो पहले मैं उनका वास श्रवण करूंगा। समित पाणी श्रोतव्यम ब्रह्म निष्ठम, सभी शास्त्र का ज्ञान होता है जो सदगुरु के पास। इसलिए कहा गया है चैतन्य चरितामृत में कहा गया है ईश्वर स्वरूप भक्ति तार अधिष्ठान भक्तर हृदय कृष्ण सतत विश्राम, तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम गोविंद कहना मम वैष्णव प्राण। सदगुरु जो शुद्ध भगवान के प्रिय भक्त हैं उनके हृदय में 24 घंटा भगवान कृष्ण विराजमान रहते हैं। हम भौतिक हम जितना भी ज्ञान क्यों ना हो जितना भी हमारा भौतिक ज्ञान क्यों ना हो लेकिन अगर हम भगवान कृष्ण के प्रति हमारा पूर्ण शरणागत नहीं है अनन्य प्रेम नहीं है तो कभी भी उनका कभी भी हम पादाश्रय नहीं करना चाहिए उनका संगति में नहीं रहना चाहिए। जैसा शास्त्र में कथा आता है बर्तंती मुनि और राजा कच्छ का बात, एक बार बर्तंती मुनि राजा कच्छ को बोले कि मेरे को तुम अगर प्रसन्न करना चाहते हो तो तुमको 1400 करोड़ स्वर्ण मुद्रा देना पड़ेगा, 1400 करोड़ स्वर्ण मुद्रा देना पड़ेगा। तो वो क्या करेंगे, उनके पास कहां से इतना संपत्ति आएगा, वो क्या किए महाराज रघु के पास गए बोले कि मेरे को ऐसा गुरु का सेवा में गुरु को प्रसन्न करने के लिए गुरु मेरे को पहले उस सेवा दिए हैं कि 1400 करोड़ स्वर्ण मुद्रा उनको देना है। तो राजा रघु क्या किए उनको प्रसन्न उनकी उनका बात स्वीकार किए एवं कुबेर के पास गए। कुबेर से मैंने बोले कि देखिए ये मेरे को एक मेरा आश्रय लेना लेने के लिए आया है, ये मेरे को कुछ मांगने के लिए आया है, मैं उसको कुछ सेवा करूंगा इसलिए इसका गुरु का निर्देश है कि उसको 1400 करोड़ स्वर्ण मुद्रा देना है, इसलिए आप ये मेरा मदद मांगने के लिए आया है इसलिए मैं आप थोड़ा इसको मेरे को दीजिए। तो मना कर रहे थे तो ऐसा युद्ध किए युद्ध में परास्त कर दिए। बाद में उनका राज्य में उनका महल में पूरा स्वर्ण मुद्रा बारिश हो गया, उसमें से 1400 करोड़ स्वर्ण मुद्रा बर्तन मुनि के दिए। कहने का मतलब यह है कि हम अगर सद्गुरु का पादाश्रय करेंगे तो हमारा हर समय हमारा आनंद ही आनंद है, नहीं तो कभी भी हमारे जीवन में मंगल नहीं हो सकता। जैसा सोने का मुद्दी है एवं उसके ऊपर अगर हीरा लगा देते हैं तो सोने का महत्व तो बढ़ जाता है, साथ ही साथ हीरे का भी। उसी प्रकार जीव और भगवान के बीच गुरु मध्यस्थता करते हैं, वो ओकिलाती करते हैं। अगर जीव भक्ति कर रहा है लेकिन ठीक से नहीं भी कर पा रहा है, गुरुदेव देख रहे हैं शिष्य को कि ये प्रयास कर रहा है भक्ति के लिए लेकिन नहीं हो पा रहा है, लेकिन गुरुदेव भगवान को प्रार्थना करते हैं कि शिष्य प्रयास कर रहा है आप उसको कृपा कीजिए, तो उनके कृपा से शिष्य उधार हो जाता है। तो यहां पे सोने का जो रिंग है उसको शिष्य के साथ तुलना किया गया है। अगर भगवान को डायमंड हीरा के साथ तुलना किया गया है, एवं जीव अगर भगवान के साथ संपर्क रखता है गुरु के निर्देश में, तो उसका चमक बढ़ जाता है, उसका तेज बढ़ जाता है। हम अकेला कभी भक्ति नहीं कर सकते, जितना भी हम गीता भागवत के ऊपर ज्ञान क्यों ना हो, कभी नहीं हो सकते। इसलिए कहा गया है, समाश्रितं ये पदपल्लवं प्लवंग महं पदं पुण्य यशो मुरारी भवाम्बुदीर्जस्य पदं परं पदं 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 जत विपदान तेषां। अगर महत साधु का अगर हम आश्रय लेंगे तो इस संसार को पार करना कैसा है, गाय का बछड़ा का खुर का पार करने के बराबर है। जैसा बारिश में गाय का बछड़े के खुर से धाग माने मिट्टी में गड्ढा हो जाता है, उसके ऊपर पानी जम जाता है, उसको पार करना कुछ तकलीफ होता है क्या? तकलीफ नहीं होता। उसी प्रकार अगर कोई अगर महान महत साधु आचार्य का आश्रय लेता है तो उसके भवसागर उसको गाय का खुर पार करने के बराबर होता है। इसलिए गुरु कृष्ण चरणारूप का आश्रय लेके हम इस संसार से पार हो सकते हैं। तो यहां पे प्रहलाद महाराज दोनों सुतलोक चले गए हैं, लेकिन भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं किसको, शुक्राचार्य को, कि उनका उनको आप अभिशाप क्यों दिए। अगला श्लोक में परपट में प्रभुपाद जी महाराज बताए हैं कि शुक्राचार्य अपने को प्रायश्चित कर रहे हैं कि मैं गलती कर दिया बोल के। गुरु हर समय शिष्य को सही उपदेश देना चाहिए। लेकिन बलि महाराज भक्ति का गुण था, भक्ति का उनके पास नम्रता था, भक्ति का कला गुण था, इसलिए पूर्ण रूप में विजयलाभ किए, आत्मनिवेदन किए भगवान को। तो यहां पे प्रश्न उठ सकता है कि यह तर्क किया जा सकता है, जब बलि महाराज उस स्थान से चले गए थे तो उनके दोषों का निर्णय कैसे हो सकता था। इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य को बताया कि वहां बलि महाराज की उपस्थिति आवश्यक नहीं थी, क्योंकि ब्राह्मणों की उपस्थिति में निर्णय हो जाने पर उनके सारे दोषों एवं कमियों का निराकरण हो जाएगा, क्योंकि वो यज्ञ स्थल में ब्राह्मण भी थे। इसलिए वो निर्णय किए कि बलि महाराज का कोई भी दोष नहीं है, वो निष्पाप है। वास्तव में बलि महाराज कोई दोष नहीं है, क्या दोष किए? भगवान आए, तीन पग भूमि मांगे। अगर बलि महाराज इतने दानी थे, कोई भी उनके पास आए तो किसी को खाली हाथ में नहीं भेजते थे। एवं जब शुक्राचार्य बताने कि स्वयं भगवान आ रहे हैं, तुम्हारे दो पग में सब खत्म हो जाएगा, तुम्हारे राज्य छीन लेंगे, सब लेंगे, और कुछ तीसरे पग रखने के लिए स्थान ही नहीं मिलेगा। लेकिन बलि महाराज क्या बोल रहे हैं, अगर साक्षात इस संसार भगवान का ही है, इस अवश्यम इदम सर्वम जत्किंति जगत जगत, इस संसार में तुम जो कुछ देख रहे हो, इस संसार में जो कुछ सब भगवान का है, तो भगवान का चीज भगवान ले रहे हैं, इसमें गलती क्या है, इसमें मेरा गलती क्या है? अगर हमारे पास यहां पे स्कन में हम आए हैं, सुंदर कुछ जामिका चीज हमारे पास है, लैपटॉप है कि कुछ नामिका चीज है, उसको कोई ले जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं, कष्ट तकलीफ होता है। भगवान गीता में बोल रहे हैं भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि अहम भक्तो पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विजः,
मैं भक्त का अधीन हूं, भक्त मेरे सिवा कुछ नहीं जानता, मैं भक्त का सिवा कुछ नहीं जानता। अगर भक्ति सब कुछ हमारे पास है लेकिन भक्ति नहीं है तो क्या फायदा। कोई अगर भौतिक संपत्ति ले भी जाए लेकिन हमारे पास तो जपमाला तो है, भगवान को दर्शन तो कर रहे हैं, ये हमारा संपत्ति है। इस संपत्ति अगर हमारे से जा रहा है तो तब हम दुखी होना चाहिए। जैसा चैतन्य महाप्रभु गया में जब ईश्वरपुरी को दर्शन किए तो दर्शन करते ही बोल रहे हैं, तीर्थेर परम तुमी, प्रभु मैं आपको दर्शन कर लिया, ईश्वरपुरी को मैं आपको दर्शन कर लिया तो मेरा तीर्थ यात्रा सफल हो गया। उनका गुरुदेव माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी मैंने ईश्वरपुरी ऐसा उनका माधवेंद्रपुरी का सेवा किए तो भगवान इतना प्रसन्न हो गए शिष्य का गुरु के प्रति निष्ठा देख के, तो खुद भगवान ईश्वरपुरी का शिष्यत्व ग्रहण किए। देखिए हम खुद देख रहे हैं, खुद भगवान ग्रहण किए। एवं जब गया में दर्शन कर रहे हैं तो चरण कमल को स्पर्श करके बोल रहे हैं, तीर्थर परम तुमी, आपको मैं दर्शन कर लिया, मेरा तीर्थ यात्रा सफल हो गया। तो जब गुरु का शिष्य जब गुरु को दर्शन करता है, दर्शन करने से उसका पाप चला जाता है। तुम्हारा दर्शन है पवित्र कर ए तुमार गुण, तो इसलिए अगर भगवान अगर वहां पे हैं तो पहले भगवान के बात को हमको सुनना है। जैसे चैतन्य भागवत में कहा गया है, जत देख वैष्णवेर व्यवहार दुख निश्चय जानिय तहा परमानंद सुख। वैष्णव बाहर से दिखाई पड़ता है वो दुखी है, वो दुखी नहीं है। सब बलि महाराज को नागपास अस्त्र में बांध दिया गया लेकिन बलि महाराज दुखी नहीं हुए, वो पूर्ण शरणागत थे भगवान के ऊपर। इससे हम क्या शिक्षा करते हैं, जीवन में सब कुछ चला जाए लेकिन अगर नाम है, जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भगवान को दर्शन कर रहे हैं, तो इससे बड़ा और कुछ भी धन नहीं है। अशोक अभय अमृत आधार तुम्हारा चरण द्वय, जहां पे शोक नहीं है, जहां पे भय नहीं, जहां पे मृत्यु नहीं है, वही स्थान है भगवान के चरण कमल। अगर वही चरण कमल को अगर बलि महाराज के सामने है तो अरे दुख कहां क्यों होंगे वो। फिर कहा गया है, धने जने पांडित्य कृष्ण नाही पाए, केवल भक्ति रवस चैतन्य गोसाई। कोई धनी, कोई पंडित कृष्ण को नहीं पा सकता, केवल भक्ति रवसा चैतन्य गोसाई। केवल भक्ति में भगवान बस हो जाते हैं। भक्तिस्तु अहम भक्त पराधीन, तो हमको ना ज्ञानी बनना है ना योगी बनना है, हमको एक निष्काम निष्किंचन एक भगवान का अनन्य भक्त बनना है। जैसा हम देखते हैं चैतन्य चरितामृत में श्रीधर कलावेचा का बात आती है, जो कि द्वापर युग में सुदामा थे। श्रीधर कलावेचा उनका व्यवसाय क्या था, केला का पत्ता, केला इसको बेच के जो इनकम होता था उसको गंगा आधा गंगा माता के सेवा में लगाते थे और आधा अपने परिवार चलाने में लगाते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या करते, हर दिन आते थे श्रीधर कलावेचा के दुकान पे, पूछते थे इस केले के पत्ते का दाम क्या है। तो चैतन्य श्रीधर कलावेचा बोलते थे इसका 5 अना है, उसमें अना चलता था। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते थे मैं उनको 2 अना दूंगा दो। फिर बोलते थे नहीं मैं प्रभु इसका उपयुक्त मूल्य आपको देना पड़ेगा, नहीं नहीं इसका मैं 2 अना ही दूंगा। फिर जबरदस्त छुड़ा के ले जाते थे, फिर श्रीधर कलावेचा क्या करते, चैतन्य महाप्रभु का हाथ को पकड़ लेते थे, फिर खिंचके लेके जाते थे, फिर हाथ पकड़ लेते थे। तो चैतन्य महाप्रभु बोले श्रीधर तुमको कितना धन चाहिए बताओ, कितना संपत्ति चाहिए? तो श्रीधर कलावेचा क्या बोले, प्रभु मेरे को कुछ नहीं चाहिए, हर दिन आप मेरे यहाँ पे आइए, मेरे हाथ से छुड़ा के लीजिए, मैं आपका हाथ पकड़ूंगा, फिर मेरे हाथ से छुड़ा लीजिए, मैं हाथ पकड़ूंगा, यही आनंद मेरे को चाहिए। देखिए, एक ही लोटा था श्रीधर कलावेचा के घर में, छतरी घर में छत नहीं था, पानी बारिश में पूरा घर भीग जाता था, गर्मी में धूप रह आता था, एक छिद्र था एक पात्र में, उसमें पानी पीते थे, उसमें भोजन करते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनके घर जाके उसी पात्र में उनके साथ भोजन करते थे। कितना भगवान भक्त वत्सल है, देखिए, यही भक्ति का पराकाष्ठा है। जहां पे अगर भगवान खुश नहीं है लेकिन सब कुछ है हमारे पास, मन में शांति नहीं है, तो हम कैसा सुख पा सकते हैं? शांति का सूत्र है भगवान, भुक्तारंग जग्य तपसा सर्वलोक महेश्वरम श्रुदंग सर्वभूतानां ज्ञात्वामां शांति मृच्छति। फिर कहा गया है, नास्ति बुद्धि रजुक्तस्य नजाजुक्तस्य भावना नचा भावयुत शांति अशांतस्य कतो सुखम। जिसका भगवान के साथ युक्त नहीं है, जिसका बुद्धि स्थिर नहीं है, नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य नचाजुक्तस्य भावना, भगवान के साथ संश्लिष्ट नहीं है, युक्त नहीं है, नचा भावयो तो शांति, वो कभी भी शांति नहीं प्राप्त कर सकता। अगर शांति नहीं है तो सुख कहां से आएगा, बताइए। शुक्राचार्य इतना परम ज्ञानी है, परम विद्वान है, लेकिन उसके मन में शांति नहीं पा रहे थे, क्योंकि भगवान के साथ पूर्ण शरणागत नहीं थे। जैसा हिरण्यकश्यपु की तुलना में प्रहलाद महाराज इतना तपस्या नहीं किए, हिरण्यकश्यपु जितना तपस्या किया, लेकिन 24 घंटा भगवान को स्मरण करते थे, और स्मरण करते थे हर समय, भगवान को स्मरण करते थे, इसीलिए उनका जो कष्ट भी जो हिरण्यकश्यपु दिया, वो कष्ट उनको कष्ट जैसा लगा ही नहीं। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति सम सर्वेषु उतेषु मद्भक्ति लभते परान। हर समय भगवान को दर्शन करता है, हर जगह भगवान को दर्शन करता है, भगवान को हर समय मन 24 घंटा भगवान के चरण कमल में उसका रहता है, वही भक्ति का लक्षण है। इसलिए जो सद्गुरु होते हैं 24 घंटा काय मन वाक्य में भगवान को शरणागत होते हैं, भगवान का प्रति उनका अनन्य शरणागत होता है, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान का सेवा में, भगवान का कथा, भगवान का प्रचार करने में लगे रहते हैं जो सद्गुरु होते हैं। एवं अगर सद्गुरु होते, अगर सही उपदेश नहीं दे रहे हैं, भगवान कृष्ण का ज्ञान नहीं दे रहे, तो उनका कैसा हम आश्रय ले सकते हैं? अगर वो जिस गड्ढे में जाएंगे, हमको भी गड्ढे में जाना पड़ेगा, तो हमारे जन्म मृत्यु से कैसा हम छूट सकते हैं? इसलिए नित्यानंद महाप्रभु का कृपा, प्रभुपाद जी का कृपा हर समय हमको चाहिए। इसलिए कहा गया है, निताई गुणमणि अमार निताई गुणमणि अनिया प्रेमेर वन्य भाषा या लवणी, जैसा लवणी जैसा मक्खन जैसा गिरा देंगे तो फैल जाता है पूरा चारों तरफ, उसी प्रकार नित्यानंद महाप्रभु प्रेम का बन्या प्लावित कर दिए इस दुनिया में। प्रेमेर बन्या लया निताई आईला गोड़ा देसे डुबीला भगत गण दीनहीन पासे दीनहीन पतित पा मर नहीं बाचे ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सभाकर याचे अबद्ध करुणा सिंधु काटिया मुहाण घरे घरे बुले प्रेम अम्यार बाण। लोचन बोले, मोर निताई जेबाना भजिल जानिया सुनिया से ही आत्मघाती हैल। जो नित्यानंद का भजन नहीं करता और जान बुझ के जहर खा रहा है, कहा गया है। इसलिए गुरु का पदवाच्य गुरु तत्व बहुत गंभीर चीज है, ये कोई आसान छोटा मोटा चीज नहीं है। इसलिए गुरु को सदगुरु का अगर पादाश्रय करेंगे तो हमारे भवसागर से उद्धार हो सकता है। गुरु हर समय शिष्य का कल्याण चाहते हैं, हर समय उसका मंगल चाहते हैं। अगर गलत दिशा में जाए फिर भी उसको अंगुली पकड़ के सही रास्ता में लाते हैं, ये गुरु है, सदगुरु है। एवं कभी शिष्य का अमंगल नहीं चाहते। अगर गुरु का अगर कृपा नहीं मिलेगा तो हमारा गति कहाँ पे होगा। लेकिन अगर गुरु अगर सही बात सही उपदेश नहीं देंगे तो उनको त्याग कर सकते हैं। जैसा बलि महाराज यहाँ पे शुक्राचार्य को त्याग कर दिए, उनका कुलगुरु हैं फिर भी उनको त्याग कर दिए, इसीलिए कि उनको सही उपदेश नहीं दे रहे, सही मार्ग नहीं दे रहे। इसलिए इससे हम ये शिक्षा करते हैं कि जैसा बलि महाराज सही उपदेश नहीं पाने के नाते अपने गुरु शुक्राचार्य को त्याग कर दिए, उसी प्रकार एवं भगवान कृष्ण जो बताए उनका एज इट इज जैसा बताए वैसा उनको बात स्वीकार की है। इसलिए हमको इससे ये शिक्षा मिलता है कि जैसा बलि महाराज पूर्ण आत्मसमर्पण किए भगवान को, वैसा हमको आत्मसमर्पण करना चाहिए सदगुरु के पादाश्रय में, तो हमारा कल्याण हो सकता है। एवं गुरु के माध्यम से हम भगवान कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम अनन्य भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जैसा आप सुने होंगे दक्षिण भारत में जब चैतन्य महाप्रभु प्रचार करने के लिए गए तो कुछ पंडित लोग एक जगह में बैठे थे, वहां पे एक अनपढ़ एक व्यक्ति बैठा था, वो हर भगवत गीता को पकड़ के खाली रो रहे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब वहां पे पहुंचे तो पंडित लोग बोले कि महाप्रभु ये इसको कुछ भी आता ही नहीं, भगवत गीता का कुछ भी ज्ञान नहीं है उसका, कुछ श्लोक भी नहीं पढ़ सकता, अनपढ़ है, अक्षर भी नहीं पहचान सकता है। लेकिन एक एक करके पन्ना पलट रहा है क्योंकि उनके गुरु को बोले हैं कि तू हर दिन तुम भगवत गीता पढ़ना, कि पढ़ना नहीं भी आता लेकिन पन्ना पलट रहा है उल्टा रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु उनके पास गए, बोले कि तुम गीता पढ़ रहे हो, और बोल रहे नहीं महाप्रभु मेरे को कुछ भी आता नहीं, मैं मूर्ख हूं, मेरे को ज्ञान भी नहीं है, अक्षर भी नहीं पहचान सकता, लेकिन मैं गुरु का निर्देश है कि हर दिन भगवत गीता पढ़ना, लेकिन मैं ऐसा ही पढ़ना उल्टा रहा हूं। तो बोले तुम रो क्यों रहे हो, नहीं सामने में जो हम जो फोटो है पिक्चर है वहां पे हम ये देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो कि अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, सचराचर जगत का मालिक हैं, जिसके क्षण मात्र से जिसके इशारा ही इशारा में पूरा ब्रह्मांड प्रलय हो सकता है, वही प्रभु अर्जुन का रथ हांक रहे हैं, मतलब एक ड्राइवर का काम कर रहे हैं। तो ये देख के मैं रो रहा हूं क्योंकि भगवान अपने भक्तों को कितना प्रसन्न होते हैं, कितना बच्छल कितना आनंद भक्तों को कितना श्रद्धा करते हैं, ये देख के मैं रो रहा हूं। तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु उनको आलिंगन कर लिए, बोले कि तुम ही एकमात्र भगवत गीता को समझे हो जानते हो। तो देखिए हमारा विचार देखिए, भगवान का विचार देखिए, भक्तों का देखिए, भगवान ही जान सकते हैं। जैसा एक सुनारी जो सोने का काम करता है वो जान सकता है ओरिजिनल सोना कौन सा है डुप्लीकेट कौन सा है, उसी प्रकार गुरु शिष्य को देख के पहचान लेते हैं कि ये कौन सा सेवा भगवान का कर सकता है, उसका योग्यता कौन सा सेवा करके भगवान को प्रसन्न कर सकता है, उसी प्रकार उसको उस सेवा में लगा देते हैं। उसी सेवा में अगर वो 10 घंटा भी करे तो उस थकान आता ही नहीं क्योंकि उसी सेवा में उसका रुचि आ गया है। जैसा ये हरे कृष्ण मूवमेंट इतना जल्दी कैसा प्रोग्रेस किया, क्योंकि प्रभुपाद जी महाराज के शरण कमल में जो भी आश्रय लेता था प्रभुपाद जी महाराज कभी भी उसको त्यागे नहीं, प्रभुपाद जी महाराज पहचान लेते थे एवं उस हर क्योंकि हर को भगवान एक स्पेशल क्वालिटी दिए हैं, उसको भगवान के सेवा में लगाना ही भक्ति है। तो प्रभुपाद जी महाराज जो भी आता सबको भगवान के सेवा में लगा दिए, कोई किसको बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, किसको बही छापने में, किसको पेंटिंग करने में, किसको कीर्तन करने में, किसको ड्रेसिंग करने में, किसको ठाकुर जी का ड्रेस बनाने में, सबको सेवा में लगा दिए एवं सब आनंद में भगवान का सेवा किए, जिसके वजह से धीरे 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 मूवमेंट कम समय के अंदर सारा विश्व में फैल गया। तो हम इससे ये शिक्षा करते हैं कि हम अगर पूर्ण मात्रा में पूर्ण शरणागत के साथ अगर शुद्ध वैष्णव आचार्य का शरणागत होंगे तो उनके कृपा से हम भगवान के प्रति हमारा प्रेम श्रद्धा बढ़ेगा, नहीं तो हमारा खुद का ज्ञान, खुद का नॉलेज, खुद का गीता भागवत का ज्ञान में कभी भी हम उन्नति नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रहलाद महाराज ये शुक्राचार्य जी को भगवान पूछ रहे हैं कि उनका गलती क्या है, क्यों तुम अभिशाप दे दिए। तो इसका दूसरे श्लोक में शुक्राचार्य जी अपने को पश्चाताप कर रहे हैं, अपने गलती स्वीकार कर रहे हैं, भगवान को क्षमा मांग रहे हैं। हरे कृष्णा। यह ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की हिताय, गौर ब्रह्मानंदे। अभी जो बताया इसमें किसी का कुछ प्रश्न है, टीका टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। कृष्ण बाबू जी, आपने बताया कि गुरु को त्याग नहीं करना चाहिए, मतलब शुक्राचार्य तो बलि महाराज को भी जीवित किया था ना, मतलब स्वर्ग में, मतलब युद्ध करने गए थे तो उनको मरा दिया था, मतलब बलि महाराज को फिर जीवित किया उन्होंने तो शुक्राचार्य।
देखिए, उनके पास संजीवनी विद्या थी शुक्राचार्य के पास, क्योंकि एक बार ये युद्ध में देवासुर संग्राम युद्ध में बलि महाराज मृत्युवरण कर लिए थे, लेकिन फिर भी शुक्राचार्य अपने शिष्य के ऊपर उनको फिर संजीवनी मंत्र के द्वारा जिला दिए। तो कोई किसी को जैसा कोई हम दुखी में कष्ट में हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, कोई व्यक्ति हमको कुछ पैसा खर्च करके हमको इलाज कर दिया, तो हम उसको क्या भगवान मान लेंगे क्या, बताओ? उसको क्या हम सब कुछ मान लेंगे? भगवान का परिभाषा क्या है? ऐश्वर्य समग्रस्य बीजस्य जसस्य श्रिय, जो पूर्ण मात्र में छह ऐश्वर्य में परिपूर्ण में वही भगवान है। जो भगवान कृष्ण को तत्व में जानते हैं वही गुरु हैं, जो कृष्ण को तत्व में जानते हैं। हो सकता है हमको तकलीफ से उबार लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमको जन्म मृत्यु से उबार लेंगे, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्यों? सदगुरु हैं, जैसा हमारा परंपरा में आ रहे हैं आचार्य, उनका शरणागत होना चाहिए तब हमारे जीवन में कल्याण हो सकता है। ऐसा शुक्राचार्य उनको राजनीति, समाज नीति, अर्थ मैंने दूसरे का ज्ञान देते थे, भौतिक ज्ञान, भगवान परमार्थ ज्ञान उनको नहीं दिए। लेकिन जब भगवान आने के बाद भी वो उपदेश नहीं दे रहे कि साक्षात भगवान आए, उनका शरणागत तो उनको प्रणाम, कभी बोले? कभी नहीं बोले। लेकिन भगवान बलि महाराज जानते थे, क्योंकि वो उनका प्रहलाद महाराज के वंश में आ रहे हैं, तो भगवान का पूर्ण शरणागत हो गए। अगर त्रिपाद तीन पग जब भूमि मांगे तो वो तो महान दानी थे और स्वीकार नहीं किए, एवं जब शुक्राचार्य जब बोलेंगे साक्षात भगवान आए हैं तुम्हारे से सब कुछ छीन लेंगे, लेकिन बलि महाराज बोल रहे हैं ये संसार ही भगवान का है, ये संपत्ति ठाकुर जी का है, अगर भगवान अगर उनका संपत्ति वो ले रहे हैं तो इसमें मैं तो कितने भाग्यशाली हूं, ये ठाकुर जी स्वयं मेरे पास आए, ये बोल रहे हैं शुक्राचार्य को। इसलिए इससे ये शिक्षा मिलता है कि हम अगर सदगुरु का पादाश्रय करके अगर हम भक्ति करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हमारे जीवन में कभी कल्याण नहीं हो सकता। जितना भी हमारा भौतिक ज्ञान हो, जितना भी उपदेश क्यों ना प्राप्त करें दूसरे से, अगर हमको कृष्ण का ज्ञान नहीं मिल रहा, कृष्ण के बारे में तत्व में हम नहीं जान सकते, अगर नहीं जान पा रहे, सदगुरु परंपरा से नहीं आ रहे, तो उनका कभी हम स्वीकार नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ प्रश्न है? जय ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की, राधा राशि भगवान की जय, शिल प्रभुपाद की जय, निदाय गौर प्रमानंदे, वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु व्यवस्थ पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।